दिन भर शुक्रवार 9 अक्टूबर मैं हूं निखिल रंजन। भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री आसिम अहमद खान को किया बर्खास्त।
किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता, चाहे हमें बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े और सबके ऊपर सरकार की नजर है।
सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषियों को मौत की सजा की मांग। संगीतकार रविंद्र जैन का मुंबई में निधन। इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक रिश्तों की जटिलताओं पर विस्तार से चर्चा विवेचना में।
जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी के संबंध तो चाचा और भतीजी का था। जब भ्रष्टाचार का मुद्दा जेपी ने उठाना शुरू किया, इंदिरा गांधी की एक प्रतिक्रिया से वह संबंध बिगड़ा।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आसिम अहमद खान पर रिश्वत मांगने का आरोप लगने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें मंत्री पद से हटा दिया है। केजरीवाल ने कहा कि मामले से जुड़ा ऑडियो टेप सीबीआई जांच के लिए भेजा जाएगा। आसिम अहमद दिल्ली की मटिया महल सीट से विधायक हैं। सऊदी अरब में घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही एक भारतीय महिला का हाथ उसके मालिक ने काट दिया। वेल्लोर की कस्तूरी मुनिरथिनम 3 महीने पहले काम करने सऊदी अरब गई थी, जहां अत्याचारों से परेशान होकर उन्होंने भागने की कोशिश की। इस पर बिफरी उसकी मालकिन ने उनका दाहिना हाथ काट दिया। कस्तूरी फिलहाल गंभीर हालत में रियाद के एक अस्पताल में भर्ती हैं। घटना पर कड़ा एतराज जताते हुए भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि इस तरह की वारदातों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने इस मामले की निष्पक्ष जांच और अभियुक्त के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने की मांग की है। ट्यूनीशिया की नेशनल डायलॉग क्वार्टेट को साल 2015 के नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्हें यह पुरस्कार ट्यूनीशिया में लोकतंत्र की स्थापना में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। साल 2011 में देश में हुए जैस्मिन रिवोल्यूशन के बाद व्यापक अस्थिरता के माहौल में साल 2013 में 4 संस्थाओं ट्यूनीशिया जनरल लेबर यूनियन, ट्यूनीशिया कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट, ट्यूनीशिया ह्यूमन राइट लीग और ट्यूनीशियन ऑर्डर ऑफ लॉयर्स ने मिलकर यह संस्था बनाई थी। ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के बीच पापुआ न्यू गिनी और प्रशांत महासागरीय द्वीप नाउरू में सैनिक कारागारों में रह रहे प्रवासियों को फिलीपींस में बसाने पर बात चल रही है। जब तक प्रवासियों के आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता, ऑस्ट्रेलिया उन्हें देश से दूर द्वीपों पर रखता है। मीडिया से बात करते हुए ऑस्ट्रेलिया के अप्रवासन मंत्री पीटर डटन ने कहा, पिछले कुछ समय में मैंने कई द्विपक्षीय साझेदारों से बात की है। जाहिर है, हम स्थानीय स्तर पर यथासंभव मदद करना चाहते हैं। लाखों लोग अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं और मौजूदा प्रवासी संकट का हल कोई एक देश नहीं ढूंढ सकता। ये थे ऑस्ट्रेलियाई अप्रवासन मंत्री पीटर डटन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उधर हाल में यूरोपीय संघ के देशों में प्रवासियों को बसाने को लेकर सहमति बनने के बाद प्रवासियों का पहला समूह इटली से रवाना हुआ। 20 एरिट्रियाई प्रवासियों का यह समूह स्वीडन में बसाया जाएगा। एक नई रिसर्च के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश चीन में धूम्रपान संबंधी बीमारियों के चलते 2030 से पहले 20 लाख लोगों की मौत हो सकती है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। आज निखिल रंजन के साथ। शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट मंत्री आसिम अहमद खान को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऑडियो टेप भी सुनाया, जिसमें कथित रूप से आसिम खान को किसी बिल्डर से रुपयों की मांग करते हुए सुना जा सकता है। इसके बाद केजरीवाल ने कहा,
ये पार्ट ऑफ द क्लिप्स हैं, ये कुछ छोटी सी है, 2-3 मिनट की, मैंने बताया 1 घंटे की है। ये सारा हम लोग सीबीआई को भेज रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि किसी भी हालत में भ्रष्टाचार से किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता, चाहे हमें बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े और सबके ऊपर सरकार की नज़र है, हम लोगों की नज़र है, चाहे वो ऑफिसर्स हों, चाहे वो मंत्री हों, एमएलए हों। दिल्ली सरकार में 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं। ये 1 लाख के 1 लाख कर्मचारी आज करप्शन नहीं कर रहे, ऐसा तो है नहीं। कहीं कोई करप्शन सरकार के संज्ञान में आएगा, और केवल संज्ञान में नहीं, हमने अपना नेटवर्क भी लगाया हुआ है, हम अपनी भी नजर रखे हुए हैं, कहीं कुछ पता चलेगा। आज की ये कार्रवाई सबको मैसेज देगी, सबको संदेश देगी कि अगर अपने मंत्री को ये हटा सकते हैं, मंत्री का केस सीबीआई में रेफर कर सकते हैं, तो किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो सकती है। आज इस किस्म की कार्रवाई मुझे लगता है शायद इतिहास में कभी नहीं हुई होगी। हमने ये किया, अब बीजेपी अपने शिवराज सिंह चौहान को भी हटाए, वसुंधरा राजे को भी हटाए।
अरविंद केजरीवाल की इस मांग पर प्रतिक्रिया में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए।
अरविंद केजरीवाल ने किस कारण से किसको सैक किया, वही लंबी कहानी है। योगेंद्र यादव भी सैक हुए, प्रशांत भूषण भी सैक हुए, कभी वो नजीब जंग से जंग लड़ते हैं, कभी प्रधानमंत्री से जंग लड़ते हैं, कभी राजनाथ सिंह से जंग लड़ते हैं, कभी अपनों से जंग लड़ते हैं, तो उनके जंग की कहानी को उन पर छोड़ दीजिए आप।
बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद कह रहे थे कि जो मांग की है अरविंद केजरीवाल ने, उस पर उनकी प्रतिक्रिया आपने सुनी। और अब अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट में नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव और विशाल यादव की सजा को मौत की सजा में तब्दील करने से इनकार कर दिया है। नीतीश कटारा की फरवरी 2002 में हत्या कर दी गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके लिए विशाल और विकास यादव को 30-30 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। हमारी सहयोगी प्रगति सक्सेना ने नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा से इस बारे में बात की।
उनकी SLP लगी हुई है 2, जिसमें उन लोगों ने कहा है क्रिमिनल्स ने कि हमारी सजा कम की जाए, क्योंकि मर्डर के लिए लाइफ होती है या डेथ होती है, और लाइफ अगर सिर्फ लाइफ दे दी जाती है तो 14 साल के बाद रिमिशन मिल सकता है। हमारे केस में हाईकोर्ट ने कहा था कि 25 साल तक लाइफ विद नो रिमिशन है, तो वो उन्होंने कम करने के लिए कहा है। तो अभी फिलहाल तो उसमें अपना जवाब फाइल करेंगे कि उसको कम ना किया जाए, और फिर अपनी बात जो हमने आज रखी है उसको कुछ हद तक दोहराएंगे। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने मेरे हितों की रक्षा करी है, तो जो भी मैं कह रही हूँ पूरे सम्मान के साथ कह रही हूँ सुप्रीम कोर्ट के लिए। परसेप्शंस के बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, शायद ये बहुत डीप रूटेड परसेप्शंस हैं जो हमारे यहाँ सोसाइटी में दूर तक जाते हैं। जब वो कहते हैं कि ऑनर किलिंग थी नहीं, क्योंकि वो लड़की को कार्ड देने आई थी इनविटेशन का 1-1.5 साल पहले अपनी बहन की शादी का, तो इसलिए परिवार को तो पता था और इसलिए तो कोई बात नहीं थी, सब ठीक था, और ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और फिर उन्होंने ये कहा कि अब वो लड़कों ने देखा डांस करते हुए तो उनको गुस्सा आ गया और वो ले गए, जबकि हाईकोर्ट ने बड़े क्लियरली कहा था कि ये ऐसा नहीं था कि इमोशनल उसमें हुई थी। तो इस तरह की जब बात कही जाएगी कि भाई मतलब ये ऑनर किलिंग नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट जज ने कि वो दे हैव सफर्ड इनफ, 16 साल तो कर रहे भी नहीं है, अभी 13 साल रहे हैं, 14 साल करीब होने वाला है, उसमें भी अस्पताल में रहे। तो एक परसेप्शन की बात है, और दूसरी बात वो भी थी कि भाई देयर इज नथिंग हीनियस, ये जघन्य हत्या नहीं है, क्योंकि मतलब वो तो सभी हत्याएं जघन्य होती हैं, तो किसी भी हत्या की तरह थी, फिर फोड़ दिया उनका टुकड़ा टुकड़ा करके तो नहीं फेंका ना उसे सिर्फ सर। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, लिखेंगे नहीं वो, मगर जो कोर्ट में जो लोग थे उनसे आप वेरीफाई करिएगा। फिर हमारी तो हर बात को उन्होंने उसी से कर दिया ना कि एक पेरेंट के लिए, एक माँ के लिए तो कुछ भी सजा दे दी जाए काफी नहीं है, और दूसरा ये कि ये ऑनर किलिंग नहीं है, क्योंकि मुझे जो सबसे डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि ये अब पूरा केस मैं सिर्फ नीतीश के लिए नहीं देखती हूँ, तो मैंने लगा ये सोच के कि आगे के लिए और लोग जो ऐसी बात सोचेंगे उस पर डिटरेंट लगेगी, कि जो हमारी सोच है एक पुरुष प्रधान समाज की, जिसमें मतलब पहले तो रूरल होती थी, अब बजाय इसकी कि कम हो, अब अर्बन ऑनर किलिंग शुरू हो गई है। आई वॉन्टेड कि एक रोक लगे, एक डिटरेंट हो, क्योंकि देखिए लेजिस्लेचर तो बनाएगा नहीं कानून ऑनर किलिंग के अगेंस्ट, उनके अपने कारण हैं, वोट बैंक हैं। तो हमने सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट अगर स्ट्रिक्ट कोई दिशा निर्देश देगा, वो जो नहीं आया है वो सबसे मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट की बात है।
नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा से बात कर रही थी प्रगति सक्सेना। सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विशाल और विकास यादव की सजा को मौत की सजा में तब्दील करने से इनकार कर दिया है। संगीतकार रविंद्र जैन का मुंबई में 71 साल की उम्र में आज निधन हो गया। रविंद्र जैन को इसी महीने की 6 तारीख की तबीयत खराब हुई और उसके बाद उन्हें नागपुर के अस्पताल में भर्ती किया गया। बाद में हालत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में लाया गया। बीते 24 घंटे से वो वेंटिलेटर पर थे और आज शाम 4 बजे के आसपास उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। बॉलीवुड ने उनके निधन पर शोक जताया है और कलाकारों ने अपने अपने तरीके से उन्हें याद किया है। बीवी संवाददाता विदित मेहरा की ये रिपोर्ट सुनिए।
झरोखों से मैंने देखा जो सांवर इस गीत में अपने संगीत से जान डाल देने वाले शख्स आज इस दुनिया से अलविदा कह गए। मशहूर संगीतकार रविंद्र जैन का मुंबई में आज 71 साल की उम्र में निधन हो गया। वो बीते 24 घंटों से वेंटिलेटर पर थे। मशहूर गायक उदित नारायण ने कहा कि उनका जाना एक मिरेकल के खत्म होने जैसा है।
रविंद्र जैन दादा के बारे में अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात होती है। मैं भी अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, ऐसे फनकार के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका कंपोजिशन अपने आप में एक माइलस्टोन रहा जो कमी कभी भी पूरा नहीं हो सकती।
रविंद्र जैन ने चोर मचाए शोर, गीत गाता चल, चित चोर और अखियों के झरोके से जैसी सुपर हिट फिल्मों का संगीत दिया था। उन्होंने बहुचर्चित टेलीविजन सीरीज रामायण का संगीत दिया था। अरुण गोविल जो रामायण में राम बनते हैं, उन्होंने रविंद्र जैन के बारे में कुछ ये कहा।
मैं उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में याद करता हूँ जो संगीत से तो जुड़ा ही जुड़ा था। वो उनका लेखन पाठ बहुत स्ट्रांग था, अच्छे हंसमुख से इंसान थे, बहुत प्यार से मिलते थे वो। चाहे हमने साथ में बहुत ज्यादा काम न भी किया हो, लेकिन जब भी मिलेंगे बिल्कुल ऐसा लगता था कि अपने घर का कोई व्यक्ति मिल रहा है। जिस तरह से वो बात करते थे, बैठाते थे, हम लोग बैठते थे, और बहुत ही कॉर्डियल से इंसान थे, बहुत बहुत अच्छे इंसान थे। ये नहीं कि फिल्म लाइन में हम उनसे जुड़े हैं, तो हम पारिवारिक तरीके से वो जुड़ते थे इंसान, ये उनका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था।
कई लोगों के लिए रविंद्र जैन एक संगीतकार थे तो कईयों के लिए एक परिवार। गायक कैलाश खेर मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी क्षति है।
बहुत बड़ी क्षति है, और भारतवर्ष में ऐसे लोग बहुत ही स्पिरिचुअल रीजन से जन्म लेते हैं, क्योंकि उनको आप किसी एक श्रेणी में नहीं बांध सकते हैं। वो उनको आशु कवि थे वो, और ऐसी प्रकार की आत्माएं जो होती हैं उनका पर्पस बहुत बड़ा होता है। जब से वो थे इंडस्ट्री में, उनका म्यूजिक, उनका सोचना, उनका लिखना, वो अपने आप में विलक्षण सी बात थी। ऐसे लोगों का कोई मैच नहीं होता, कोई कंपैरिजन नहीं होता। इन लोगों का कंपटीशन भी, प्रतियोगी, इनके प्रतियोगी भी ये स्वयं होते हैं।
रविंद्र जैन ने अपने संगीत और गानों से सबके दिल पर एक अमिट छाप छोड़ी है। वो खुद और उनका संगीत हमेशा के लिए अमर रहेगा। विदित मेहरा, बीबीसी दिल्ली।
और अब बात इस हफ्ते के इंडिया बोल की।
बीबीसी इंडिया बोल।
हाल ही में पाकिस्तान के गजल गायक गुलाम अली का मुंबई में होने वाला कार्यक्रम शिवसेना के विरोध के चलते रद्द कर दिया गया। ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान से आने वाले कलाकारों और खिलाड़ियों का विरोध होता रहा है। सवाल ये है कि क्या हमारी सहिष्णुता खत्म हो रही है या फिर इसकी वजह राजनीति है। शनिवार बीबीसी इंडिया बोल में यही है चर्चा का विषय। शाम 7:30 बजे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन करें 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिनभर निखिल रंजन के साथ, और अब बात करते हैं विवेचना की। 70 के दशक को भारतीय इतिहास के सबसे उथल पुथल वाले दशकों में से एक माना जाता है। इस दशक में भारतीय राजनीति में दो शख्सियतों का बोलबाला रहा, इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण। जेपी की 113वीं वर्षगांठ पर रेहान फजल समीक्षा कर रहे हैं इन दो व्यक्तित्वों के आपसी जटिल संबंधों की।
इसका जवाब क्या है? फासिज्म का एक ही जवाब है, देश का जागृत जनमत।
ये आवाज है उस शख्स की जिसने संभवतः गांधी और नेहरू के बाद आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारधारा को सबसे अधिक प्रभावित किया है। उन्होंने ताउम्र नैतिक राजनीति पर जोर दिया, और उनके नैतिक पक्ष का लाभ उठाने के लिए ही इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण को 1971 में बांग्लादेश के पक्ष में जनमत बनाने के लिए दुनिया के कई देशों में भेजा। लेकिन 1973 के बाद से इन संबंधों में खटास आने लगी। मशहूर पत्रकार और जीपी आंदोलन में भाग लेने वाले राम बहादुर राय कहते हैं,
जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी के संबंध तो चाचा और भतीजी का था, लेकिन जब भ्रष्टाचार का मुद्दा जेपी ने उठाना शुरू किया तो इंदिरा गांधी की एक प्रतिक्रिया से वह संबंध बिगड़ा। 1 अप्रैल 1974 को भुवनेश्वर में इंदिरा गांधी ने एक बयान दिया, जो बड़े पूंजीपतियों के पैसे पर पलते हैं उन्हें भ्रष्टाचार पर उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं। ये जो बयान था उससे जेपी को बहुत चोट लगी। मैंने उन दिनों देखा है कि जेपी करीब 15-20 दिन तक उन्होंने दूसरा कोई काम नहीं किया सिवाय इसके कि उनकी जो आमदनी थी खेती से बाकी जगहों से उस आमदनी को का ब्यौरा तैयार किया, प्रेस में दिया और इंदिरा गांधी को भी भेजा कि ये है हमारी आमदनी, ये हमारा खर्च।
जेपी के एक और पुराने सहयोगी रजी अहमद, जो कि पटना में गांधी संग्रहालय के सचिव हैं, कहते हैं कि जेपी जवाहरलाल नेहरू को अपने बड़े भाई की तरह मानते थे।
जब प्रकाश जी की ट्रेनिंग तो आनंद भवन में हुई थी, उस वक्त इंदिरा गांधी कम उम्र थे। जवाहरलाल जयप्रकाश जी के जितने करेस्पॉन्डेंस देखेंगे तो जवाहरलाल को वो माय डियर भाई लिख रहे हैं और जवाहरलाल जो जवाब देते हैं माय डियर जयप्रकाश, तो बड़े भाई और छोटे भाई का रिलेशनशिप जब तक जवाहरलाल जिंदा रहे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते रहे, लेकिन वो उस पीढ़ी की जो है आज की पॉलिटिक्स नहीं है कि वो खानदानी लड़ाई होकर आ गई है। इंदिरा जी तो आनंद भवन की नीयत थी, तो इसलिए जयप्रकाश जी से बहुत ही करीबी थी और 71-72 तक जो है वो बहुत ही स्मूथ रिश्ता है। वो हमेशा जयप्रकाश जी के लिए हिंदू ही रही है। एक लेकर अगर गौर से अगर आप देखेंगे तो चंडीगढ़ से जेल डायरी है जो एक लेटर लिखा है, उसमें पहली बार गालमन जयप्रकाश जी ने माय डियर प्राइम मिनिस्टर लिखा है।
राम बहादुर राय का मानना है कि जेपी और इंदिरा के बीच दूरी बढ़ने में जेपी की पत्नी प्रभावती देवी की मौत ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी।
प्रभावती जी गई हैं 15 अप्रैल 1973 को। मेरा ये मानना है कि प्रभावती जी जेपी और इंदिरा के बीच में एक ऐसी कड़ी थी जो दोनों को जोड़े रखती थी। प्रभावती जी को इंदिरा गांधी भी मानती थी, इसलिए मानती थी क्योंकि उनकी माता से प्रभावती जी का गहरा संबंध था। कमला नेहरू जब अपने विषाद के क्षणों में अगर सहारा खोजती थी तो वो प्रभावती जी के पास जाती थी या प्रभावती जी से अपने मन की बात कहती थी। और ये संबंध मेरा ऐसा ख्याल है कि जब जेपी आनंद भवन के कांग्रेस मुख्यालय में विदेश विभाग संभालते थे और नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, उन दिनों से ये संबंध विकसित हुआ। इंदिरा गांधी राजनीति में नहीं थी तो मेरा ऐसा ख्याल है कि जब फिरोज गांधी से इंदिरा गांधी के संबंध बिगड़े तो उसको सुधारने या उन दिनों में भी कोई अगर माँ तुल्य कोई महिला थी जिसको इंदिरा गांधी अपनी बात सुना सकती थी या बता सकती थी, वो थी प्रभावती जी। एक नैतिक महिला के तौर पर उनका विकास हुआ था जिसके कारण से जेपी और इंदिरा गांधी के संबंधों को आजीवन उन्होंने संभाले रखा।
इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण को नजदीक लाने का बीड़ा सबसे पहले कांग्रेस के युवा तुर्क कहे जाने वाले चंद्रशेखर ने उठाया था, लेकिन कुछ और लोग भी इंदिरा जेपी बातचीत करवाने की कोशिश कर रहे थे। चंद्रशेखर अपनी आत्मकथा जिंदगी का कारवां में लिखते हैं।
जेपी ने मुझसे भोजपुरी में कहा, एक बात आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन मुझसे कहा गया है कि इसकी चर्चा किसी से नहीं करनी है, खासतौर से आपसे तो बिल्कुल भी नहीं। जेपी ने कहा कि इंदिरा जी ने आज उन्हें बिहार आंदोलन के बारे में बात करने के लिए बुलाया है, इसके लिए उन्होंने एक ड्राफ्ट भेजा है, इसके आधार पर वो मुझसे बात करना चाहती हैं। उन्होंने मुझे ड्राफ्ट दिखाया, मैंने पढ़ा और कहा ये बिल्कुल ठीक है, इस आधार पर आप समझौता कर लें। जेपी ने कहा, समस्या ये है कि इंदिरा जानती हैं कि उनसे आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, फिर उन्होंने आपसे इस बात को छिपाने के लिए क्यों कहा? मैंने उनसे पूछा, ये ड्राफ्ट आपके पास कौन लेकर आया था? उन्होंने झिझकते हुए बताया, मेरे पास श्याम बाबू और दिनेश सिंह आए थे। सुनते ही मैंने कहा, इसके आधार पर आपसे कोई समझौता नहीं होगा, इसका प्रायोजन सिर्फ इतना है कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपसे बात हो रही है।
1 नवंबर 1974 को जेपी रात के 9 बजे इंदिरा से मिलने उनके निवास 1 सफदरजंग रोड गए।
जेपी को यह बताया गया था कि बातचीत आप और इंदिरा गांधी के बीच होनी है। जब जेपी 1 सफदरजंग यानी प्रधानमंत्री निवास में पहुंचे हैं तो उनको देख करके हैरानी हुई कि यहाँ बाबू जगजीवन राम पहले से बैठे हुए हैं। तो उनको पहला खटका कहें, संदेह कहें, तो यहाँ से शुरू हुआ। दूसरी घटना ये हुई कि इंदिरा गांधी कुछ नहीं बोल रही, जो कुछ बोलना है वो बाबू जगजीवन राम बोल रहे हैं। अंत में जब करीब करीब बात खत्म हो गई थी तो सिर्फ इंदिरा गांधी ने एक वाक्य कहा है, और वह वाक्य जो है वो जेपी के लिए बहुत मर्म पर चोट करने लायक था। उन्होंने कहा कि जेपी आप कुछ देश के बारे में भी सोचिए। और जेपी कहते हैं कि इंदु मैंने अब तक देश के अलावा और क्या सोचा है, और ये कह करके वो बाहर आ गए। आने के बाद उनसे जो लोग भी मिले हैं, जेपी बहुत मर्माहत थे, जो लोग भी मिले हैं सबसे उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी ने मेरा अपमान किया। और अब जेपी ने ये कहना भी शुरू कर दिया कि अब इंदिरा गांधी से हमारा सामना होगा वो चुनाव के मैदान में होगा।
लेकिन एक सफदरजंग रोड छोड़ने से पहले जेपी ने इंदिरा से कहा कि वो एक मिनट उनसे अकेले में बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने उनको लगभग पीले पड़ चुके कुछ पत्रों का एक बंडल दिया। ये पत्र इंदिरा गांधी की मां कमला नेहरू ने जेपी की पत्नी प्रभावती देवी को 20 और 30 के दशक में लिखे थे। प्रभा कमला की अकेली दोस्त और राजदार थी, जिनसे वो नेहरू परिवार में उनके साथ हो रहे खराब सलूक की चर्चा कर सकती थी। जेपी के इस जेस्चर से इंदिरा थोड़ी देर के लिए भावुक जरूर हुई, लेकिन तब तक उन दोनों के बीच खाई इतनी बढ़ चुकी थी कि उसको पाटना बहुत मुश्किल था। इंदिरा गांधी के सचिव रहे पीएन धर अपनी किताब इंदिरा गांधी द इमरजेंसी एंड इंडियन डेमोक्रेसी में लिखते हैं,
हमारे और जेपी के बीच मध्यस्थता कर रहे गांधी पीस फाउंडेशन के सुगत दास गुप्ता ने मुझसे कहा था, नीतिगत मामलों का उतना महत्व नहीं है, मेरी सलाह यह है उनको कुछ मान दीजिए। बकौल राधाकृष्ण और दास गुप्ता, जेपी उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी उनसे उसी तरह के संबंध स्थापित करेंगी जैसे नेहरू और गांधी के बीच हुआ करते थे। इंदिरा गांधी जेपी की एक इंसान के तौर पर कद्र जरूर करती थी, लेकिन उनके विचारों से वो शुरू से ही सहमत नहीं थी। उनकी नजर में वो एक ऐसे सिद्धांतवादी थे जो अव्यवहारिक चीजों को अधिक महत्व देते थे। एक दूसरे के बारे में ऐसे विचार रखने के बाद दोनों के बीच समान राजनीतिक समझ पैदा करना लगभग असंभव था। सच्चाई ये थी कि दोनों का अहम बहुत बड़ा था और नियति के पास उन दोनों के बीच टकराव होने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
टकराव इस हद तक गया कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी और जेपी को अन्य विपक्षी नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।
भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र के काम को ही नकारने की कोशिश की जा रही है विधिवत रूप से।
जेल में जेपी की तबीयत बहुत खराब हो गई, अंततः उन्हें पेरोल पर छोड़ा गया। जेल से छूटने के बाद बीबीसी ने सबसे पहले उनसे बात की। उन्होंने भारत की जनता को संदेश देते हुए कहा,
जनता हिम्मत रखे और अपनी रीढ़ सीधी रखे, युवक अपने डटे रहे, भविष्य अभी अंधेरा लगता है लेकिन उज्जवल है, देश निकलेगा इस अंधेरे से।
1977 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटाकर चुनाव कराने का फैसला लिया। इस चुनाव में जनता पार्टी की जीत हुई और इंदिरा गांधी अपनी खुद की सीट हार गई। ऐसे समय जब जनता पार्टी की सरकार बनने की कवायद चल रही थी, जेपी इंदिरा से मिलने उनके घर गए।
इंदिरा गांधी उन दिनों नर्वस ही नहीं थी, हिस्टीरिया का जो दौरा होता है उस तरह के दौरे से गुजर रही थी, क्योंकि उनको ये लग रहा था और बयान भी इस तरह के आ रहे थे कि संजय गांधी को पकड़ करके और सार्वजनिक रूप से उनका उसी तरह से नसबंदी की जाएगी जैसे उन्होंने दूसरे लोगों की करवाई थी। इससे इंदिरा गांधी संजय गांधी की सुरक्षा के बारे में बहुत चिंतित थी। जेपी को ये सूचनाएं भी मिली और जेपी का जो मानवीय पक्ष था वो भी काम कर रहा था। जेपी गए हैं, इंदिरा गांधी से भेंट की है, इंदिरा गांधी से ये पूछा है कि प्रधानमंत्री न रहने पर तुम्हारा खर्च वगैरह कैसे चलेगा। तो इंदिरा गांधी ने उनको ये बताया कि हमको जो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकों से जो रॉयल्टी आती है, यानी जो आमदनी के जरिए थे, उसके बारे में बताया। और जेपी ने इंदिरा गांधी को आश्वस्त किया कि किसी तरह की जाति, किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। और उन्होंने चौधरी चरण सिंह से, मुरारजी देसाई से व्यक्तिगत तौर पर अपील की। यही नहीं, उन्होंने एक बयान भी दिया और बयान में एक पॉलिटिकल पॉइंट कहा। और वो दरअसल वो बयान एक तरह से कहा जाए तो भविष्य का संकेत भी था। बयान यह था कि इंदिरा गांधी का राजनीतिक भविष्य समाप्त नहीं हुआ है, वो है, और इसे जनता पार्टी के नेताओं को समझना चाहिए।
कुछ ही दिनों में जेपी का जनता पार्टी से भी मोह भंग हो गया। वो पटना में बीमार पड़े थे और जनता पार्टी के नेताओं ने उनकी कोई सुध नहीं ली। कुलदीप नैयर कहते हैं,
जेपी वो समझते थे कि पॉपुलैरिटी में उनसे ज्यादा है और वो खुद चाहते कि मैं पॉपुलर हुए नहीं इतने। मैंने बल्कि कहा एक दफा कि मैं अभी पटना में था तो जेपी बहुत नाराज थे, तो मैंने कहा मुरारजी भाई आपको जाना चाहिए पटने, मैं तो कभी गांधी को मिलने नहीं गया था, तो ये क्या। तो ये वो उनके दिमाग में था। मैंने कहा नहीं, जेपी की मूवमेंट तो क्या ठीक है, जेपी मूवमेंट वगैरह ये तो हम सब लोगों ने भी तो कुछ किया वगैरह इस तरह का। बल्कि जब इंदिरा गांधी ने बहुत शी स्पॉटेड आउट, जब वो जेपी का ध्यान तो होता है तो शी वॉज देयर और सब कुछ वहीं करती है जाके, क्योंकि शी वॉन्टेड टू गेट माइलेज एंड शी डिड गेट दैट पॉइंट।
रजी अहमद कहते हैं कि जेपी की जिंदगी के आखिरी दिनों में दोनों के रिश्ते फिर ठीक हो गए, लेकिन कुछ टीकाकारों का मानना है कि इंदिरा गांधी की जेपी से आखिरी मुलाकात उनकी राजनीति का हिस्सा थी, उसमें वो पूरी तरह से सफल भी हुई। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
रेहान फजल की विवेचना आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार है। और अब कार्यक्रम में सुन लेते हैं खेल समाचार आदेश कुमार गुप्त से।
जी निखिल, अगर क्रिकेट की बात की जाए तो कल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच बारिश की भेंट चढ़ गया, जिसकी वजह से पिछले दो मुकाबले जीतने के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने ये सीरीज 2-0 से अपने नाम की। अब दोनों टीमों के बीच 11 तारीख से एक दिवसीय सीरीज शुरू होगी, जिसका पहला मैच कानपुर में रविवार को खेला जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि वहाँ भारतीय टीम शायद अच्छा प्रदर्शन करे। अगर बैडमिंटन की बात की जाए तो डच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में थोड़ी देर पहले पुरुषों के युगल वर्ग में भारत के मनु अत्री और बी सुमित रेड्डी की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जर्मनी के मैक्स स्वेंजर और जोशे जुर्वेने की जोड़ी को 18-21, 21-13, 21-19 से हराया। और इंतजार रहेगा कि भारत के अजय जयराम वहाँ किस तरह का प्रदर्शन करते हैं, क्वार्टर फाइनल तक वो पहुँच चुके हैं। उधर भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस चाइना ओपन के महिला युगल वर्ग के फाइनल में पहुँच गई है। इस जोड़ी ने सेमीफाइनल में मेज़बान चीन की चेन लियांग और यी फान यांग की जोड़ी को 6-2, 6-3 से हराया। सानिया मिर्जा लगातार चौथे साल इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची और साल 2013 में वो जिम्बाब्वे की कारा ब्लैक के साथ मिलकर खिताब भी जीत चुकी है। उधर इन दिनों न्यूजीलैंड का दौरा कर रही भारतीय हॉकी टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए तीसरे मैच में मेजबान न्यूजीलैंड को 3-2 से मात दी। दोनों टीमों के बीच आखिरी मैच रविवार को खेला जाएगा और भारतीय टीम फिलहाल 2-1 की बढ़त ले चुकी है।
बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त खेल समाचारों के लिए। और अब आखिर में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आसिम अहमद खान पर रिश्वत मांगने का आरोप लगने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पद से हटा दिया है। सऊदी अरब में घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही भारतीय महिला कस्तूरी मुनिरथिनम का दाहिना हाथ उसके मालिक ने काट दिया। भारत ने इस पर कड़ा एतराज जताया है। ट्यूनिशिया की नेशनल डायलॉग क्वार्टेट को साल 2015 के नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के बीच पापुआ न्यूगिनी और प्रशांत महासागरीय द्वीप नाउरू में रह रहे प्रवासियों को फिलीपींस में बसाने पर बात चल रही है। उधर हाल में यूरोपीय संघ के देशों में प्रवासियों को बसाने को लेकर सहमति बनने के बाद 20 प्रवासियों का पहला समूह इटली से स्वीडन के लिए रवाना हुआ। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रही थी मानसी दास। दिन भर में आज इतना ही, आपसे अगली मुलाकात होगी 1.5 घंटे बाद घटना चक्र में। तब तक खबरें देखनी है तो आइए bbchindi.com पर। आज स्टूडियो संभाला शाकिर आलम ने, सभी साथियों संग निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।